ओम शांति।
कैसे लग रही है आप सभी को भट्टी? अच्छी लग रही है। क्या अच्छा लग रहा है मधुबन में? सहज योग है जी। बाबा का हर समय सानिध्य मिल रहा है, बहुत अच्छा। और क्या अच्छा लगा आपको? पहली बार भट्टी कर रहे हो यहाँ पे? पहली बार, सेकंड टाइम, फर्स्ट? बहुत बड़ा भाग्य है कि मधुबन में हमें भट्टी का अवसर मिला और पहली पहली भट्टी आपकी है। पहला नंबर भी तो आपका है ना, पता है ना इस बात का? नहीं पता, पहला नंबर आपको मिला है। चलिए, आज का विषय है, क्या विषय है आज का? यथार्थ याद द्वारा विक्रम विनाश कैसे हो? नहीं, याद तो है किंतु यथार्थ है? यथार्थ माना रियल, वास्तविक। अगर प्लग लेके किसी ऐसी छेक में डाल दें तो आपका बल्ब जलेगा? जलेगा? किसी छेक तो होते हैं, छेक में डालते हैं ना, ऐसे प्लग में जो छेक होते हैं ना, जो आप प्लग लेके छेक में लगा दें, किसी छेक में लगा दें, उसमें करंट ना हो तो क्या होगा? प्लग जले, वो बल्ब जलेगा, पंखा चलेगा, आपका सीडी प्लेयर चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो यथार्थ याद माना हमारी जो एक्यूरेट याद क्या है। ठीक है, तो क्या होती है एक्यूरेट याद? चलो आप बताओ, आप कैसे याद करते हो बाबा को? आप कह रहे हैं हम बाबा को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है एक्यूरेट याद? सविता बहन आई, कोई बात नहीं है जी। अपने को आत्मा समझना, और एक्यूरेट याद क्या है? बहुत प्यार से याद करना। प्यार किसे कहते हैं? हो जाना, मेरा जो है जैसा है वो बाबा है। बहुत, और है जी, अपने आप को भूल गए थे अभी उसको, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तब गॉड को रिलाइज करना। बहुत अच्छा, परमात्मा का यथार्थ रूप क्या है? बिंदु स्वरूप। बहुत अच्छा, बहुत। ठीक बात, पर फिर इतना इजी है क्या? बहुत अच्छी बात। तो आप कितने घंटे याद करते हैं बाबा को रोज? हर समय याद करते हैं, तो आप तो कर्मातीत हो गए। नहीं, आज बाबा ने कहा मुरली में अंतिम, जब अंतिम समय आएगा तब 8 घंटा याद पहुंचेगी। हर समय याद है ना वो। चलो, उस पर आज हम गहराई से चिंतन करेंगे। शुरू करें, सविता बहन शुरू करें, आ गया? नहीं, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं। परिचय चाहिए क्या आपको मेरा? परिचय कोई आवश्यकता नहीं, परिचय कोई आवश्यकता नहीं। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, मैं मधुबन में रहता हूँ 20 साल से। ठीक है, चल आज यथार्थ परिचय। अच्छा, यथार्थ ये वाला परिचय, बाकी जो बताने वाले वो यथार्थ नहीं है। जो मैंने बताया वो यथार्थ परिचय बताया, वो यथार्थ नहीं बताएंगे अभी।
सत्य परिचय तो यही है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन परिचय भी चाहिए।
और 20 साल से बाबा ने मधुबन में रखा है, बस इतना ही परिचय।
तो आप डॉक्टर सतीश गुप्ता जी को सभी जानते हैं? कोई है ऐसे जिन्होंने आज तक नहीं देखा है, नहीं सुना है? अच्छा, एक दो ही हैं बस। तो आप अभी वर्तमान समय शांतिवन में, शांतिवन के नजदीक 1 किलोमीटर पर अपना ट्रॉमा सेंटर है हॉस्पिटल, वहाँ सुपरिटेंडेंट के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, और उसके अलावा सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिसिन, कार्डियोलॉजी में और मेडिसिन में अपनी सेवाएं देते हैं। और आप सबको पता है कि आप हार्ट पेशेंट्स के लिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिग्रेशन प्रोग्राम हेल्दी एंड हैप्पी लाइफस्टाइल के द्वारा चलाते हैं और अभी तक लगभग 3000 पेशेंट्स,
6000,
अच्छा मुझे पूरा स्टेटिस्टिक्स नहीं मालूम है, 6800 पेशेंट्स जो हैं वो अभी तक बिना बाईपास सर्जरी के ठीक हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसकी वजह से आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, वो लंबी लिस्ट में नहीं पढ़ूंगी, लेकिन उसमें जो विशेष अवार्ड है,
छोड़ दीजिए उससे ना वो अच्छा नहीं होता, अभी हम क्लास शुरू करते हैं।
अच्छा ठीक है,
चलो चलो।
और ऐसे तो आप बहुत अनुभवी हैं, तभी आप सुनेंगे डॉक्टर से।
बाबा से जो अवार्ड मिला उसके अलावा कोई अवार्ड चाहिए भी नहीं ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए एक मिनट फिर साइलेंस में बैठ जाओ, हम वाचा में आ गए ना, तो इसके पहले दोबारा से फिर अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लो एक बाबा की याद में, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, बस कहीं और संकल्प ना जाए। ओम शांति। देखो आज भी आपने मुरली सुनी बाबा की, बाबा क्या करने आया है, हमें 21 जन्मों के लिए हमारी लाइफ इंश्योर करने आया है। इंश्योरेंस की फीस कितनी है, इंश्योरेंस की फीस कितनी है, फीस तो नहीं पड़ती ना, उसका प्रीमियम होता है ना, कितना प्रीमियम है, प्रीमियम है तन मन धन, अपना पूरा तन, अपना पूरा मन और पूरा धन बाबा को देना पड़ता है, राइट, तब हमारी इंश्योरेंस होती है। कितने जन्मों के लिए, 40-50 है ना, कम से कम द्वापर के एंड तक तो हमारी इंश्योरेंस होती है, 42 जन्म तक होते हैं ना, तब तक का तो हमारी इंश्योरेंस हो जाती है, राइट। और आपको 21 जनवरी की मुरली जो याद होगी, अगर याद है 21 जनवरी की मुरली, याद है 21 जनवरी की, नहीं, 21 जनवरी को बाबा ने एक प्रश्न पूछा था, एक्यूरेट याद किसे कहते हैं ना, या एक्यूरेट याद कैसे आ सकती है, यथार्थ याद कैसे हो सकती है ना, साकार मुरली में था। तो बाबा ने कहा एक्यूरेट याद के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, या यथार्थ याद के लिए तीन बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात धैर्यता, पेशेंस चाहिए सबसे पहले, क्या चाहिए, धैर्यता। जल्दीबाजी करके सोचो मैं वैसे ऐसे करूं और ऐसे उड़ जाऊं, ऐसे नहीं होता है ना, राइट। बहुत धीरज चाहिए, मतलब जिसकी लाइफ में धीरज होगा ना वही एक्यूरेट याद कर सकता है, यथार्थ याद कर सकता है। जल्दीबाजी वाला मनुष्य कभी बाबा को एक्यूरेट याद नहीं कर सकता, राइट। तो पहला क्या चाहिए, तो धीरज से बैठे हो आप सभी, जल्दी तो नहीं है, तो धैर्यता के साथ पहली बात। दूसरी बात गंभीरता, सीरियस होना चाहिए अबाउट, जैसे हम लोग दुनिया का काम करते हैं, पैसे कमाते हैं सीरियसली करते हैं, खाना बनाते हैं खाना खाते हैं सीरियसली खाते हैं कि ऐसे ही खा लेते हैं, थोड़ा नाक में खाया थोड़ा मुंह में खाया थोड़ा इधर खाया, ऐसे करते हैं क्या, एक्यूरेट खाते ना मुंह में, नहीं सीरियसली खाते ना। तो हमें जो है पैसा भी कमाते हैं कहीं बैठते तो सीरियसली काम करते हैं ना, नहीं करते, तो उतना ही सीरियसली हमें ये करना चाहिए, गंभीरता। और तीसरा समझ, समझ है ना, समझ माना ज्ञान की गहराई है ना, जितना ज्ञान आपको गहराई से समझ में आया हुआ ना, ज्ञान ऊपर ऊपर से होगा ना, खाली मैं आत्मा हूं परमात्मा की संतान हूं बस ये थोड़ा सा समझे हैं, बाबा ऐसा है, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, बस हमें बिंदी समझ के याद करें, ठीक है उसमें याद बैठेगी, किंतु गहराई से अगर ज्ञान की समझ होगी ना, क्योंकि इस याद के रास्ते में बहुत सारे विघ्न भी हैं, है ना, क्योंकि हमने जो 63 जन्म जो पाप कर्म किए ना वो रास्ते में विघ्न है, वो पाप कर्म जो है वो हमें रास्ते में विघ्न डालते हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्टोर है, हमारे अंदर ही स्टोर है, वो जो पाप कर्म है कहां स्टोर है, 63 जन्मों के, इस जन्म के तो स्टोर है, इसी जन्म में यहां पर है, क्योंकि 63 जन्मों की भी फाइल अंदर है पिछले जन्मों की, वो सब रास्ते में विघ्न डालते हैं, नहीं डालते हैं? हम चाहते याद करना, हम खाना खाते खाते याद करना चाहते हैं, काम करते करते काम बाबा को याद करना चाहते हैं, हॉस्पिटल में हम पेशेंट देखते देखते कोशिश करते हैं बाबा याद रहे, किंतु बीच में भूल जाता है, पैदल कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, चाहते हैं हम पैदल करते करते बाबा को याद करेंगे तो क्या होता है, बीच में बाबा भूल जाते, साथ में सामने से कोई मिल जाता है उससे बात करना शुरू हो जाती है, वो कुछ पूछना शुरू करता है उसमें खो जाते हैं, नहीं ऐसा होता है। और कई बार वैसे भी बात याद करते करते फिर भूल जाता है, कुछ दूसरा विचार मन में आ जाएगा, नहीं होता ऐसा, होता है नहीं होता है, या मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली होता है ना। हर काम करते करते कोई भी काम कोशिश करो, इवन जब याद करने बैठते हैं तब भी क्या होता है, कभी कभी दूसरा कोई विचार आ जाता है, फिर क्या होता है, बाबा एक तरफ और मैं एक तरफ, नहीं होता ना, बीच में डिस्कनेक्शन हो जाता है ना। तो ये जो है कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि क्योंकि जो 63 जन्म में पाप कर्म किए, इस जन्म में भी किए है ना, वो पाप कर्म हमें तंग करते हैं, वो बीच में विघन बन के आते हैं। तो बाबा ने कहा तीन बातें कौन कौन सी, धैर्यता, गंभीरता और समझ, समझ की गहराई, ज्ञान समझ, समझ इसकी गहराई चाहिए। जब इस गहराई को हम समझेंगे, उस गहराई में जाएंगे, उस गहराई का प्रैक्टिकल स्वरूप बनेंगे, तो फिर बाबा की याद हमारे अंदर ठहरेगी, नहीं। और फिर बाबा ने कहा तब याद से याद मिलती है, तब बाप से करंट आने लगती है, तब आत्मा में करंट आने लगती है, राइट। और जब आत्मा में करंट आती है तो क्या होता है, तब हम हेल्दी बनने लगते हैं, निरोगी बनने लगते हैं, और साथ साथ विक्रम विनाश होने लगते हैं, आयु बढ़ती है। ये मैं पूरी की पूरी लाइन पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है, मेरे सामने मुरली है ना, 21 तारीख वाली ना, आत्मा सत्व प्रधान बनती जाती है, ठीक नहीं। आप 21 तारीख की मुरली खोल के देखना, मैंने एक्यूरेट की एक एक वर्ड बोला कि नहीं बोला, मिसिंग तो नहीं हो गया है ना। तो तीन बातें हम मन में लेके चलो, ठीक है। तो अभी हम लेते हैं कि सबसे पहले लेते हैं ज्ञान की गहराई, समझ, क्या समझ है। और एक चीज और है, हम सभी रिटर्न जर्नी पर हैं, रिटर्न जर्नी पे है ना, हमें अभी ज्ञान मिला बाबा का, ठीक है, किंतु हम रिटर्न जर्नी पे हैं। 63 जन्मों के हमें रास्ता हमारा कैसा है, 63 जन्मों के विक्रम विनाश करने के अभी हमें वापस घर जाना है। कैसे जाएंगे घर वापस, कैसे जाएंगे, पवित्र आए थे, सत्व प्रधान आए थे, और पवित्र बन के ही जाना है, सत्व प्रधान बन के ही जाना है, राइट। मतलब वहां कोई पतित आत्मा जा नहीं सकती, और पावन सत्व प्रधान बनने के दो तरीके हैं, कौन कौन से दो तरीके हैं, एक तो याद से, दूसरा मार से, है ना। कैसा बनना है, थोड़ा याद थोड़ा मार, नहीं 50-50% या पूरी याद। तो पूरी याद से ही हम जाएंगे ना, तो उसके लिए हमें बहुत बहुत एक्यूरेट हमें याद करनी पड़ेगी, राइट। तो अब हमारे पास कितना हमने पाप किए हुए, 63 जन्म में पाप किए हुए, जब से हम द्वापर युग शुरू हुआ, द्वापर से हम क्या करते आए, विकर्म किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, विकारों के वश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनके बाल बच्चे बहुत सारे हैं, है ना, पता है बाल बच्चे, आलस्य सबसे बड़ा बच्चा है इसका, है ना, सबसे बड़ा सीनियर बच्चा जो है ना वो आलस्य है ना, फिर अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, शक करना दूसरों पर, अनुमान लगाना, चिंता करना भी इसका बच्चा है, भय, डर लगना भी बच्चा है, जल्दीबाजी करना, प्रेशर में रहना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, अपनी हैबिट्स का प्रेशर, परफेक्शन का ही काम, जैसे मैंने कहा ऐसा ही होना चाहिए, कंपैरिजन कंपटीशन का प्रेशर, और ईर्ष्या द्वेष का प्रेशर, ये सब इनके वश होकर जो भी हम कर्म, जो भी हम सोच देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, हाथ पैरों से जो कर्म करते हैं, कुछ छूते हैं, ये सब के सब कर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बोलना भी कर्म है। अगर आपने किसी से गुस्से से बोला, किसी से नफरत से बोला, किसी का दोष निकाल के बोला, शक के बोल बोले, चिंता के बोल बोले, डर के बोला, तो क्या होगा, वो भी पाप कर्म है, नहीं। क्रोध के, तो क्रोध तो पाप कर्म है ही, किसी को ऐसा शब्द बोला जिससे वो हमारे मुंह में फंस जाए, अटैचमेंट उसको हमसे मोह हो जाए, किसी को प्रभावित करने की कोशिश की, या किसी के प्रभाव में आ गए, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, अलौकिक भी प्रभाव में आते हैं ना, वो भाई बहुत अच्छे हैं, वो बहन बहुत अच्छी है, वो दीदी बहुत अच्छी है, है ना। सिर्फ एक के प्रभाव में रहना है, किसके प्रभाव में, सारी द्वापर से तो हम प्रभाव में आते ही रहे ना, कभी किसी के कभी किसी कभी किसी के, अभी भी प्रभाव में आए तो क्या होगा। चार बातें हैं ना जो जीवन में, लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव। ये चार चीजें हमारे जीवन में ऐसी हैं जो बड़ी सूक्ष्म है, नजर नहीं आती, नजर आती है क्या। लगाओ, बस मुझे उसके साथ बैठना अच्छा लगता है, उसको फोन करना अच्छा लगता है, उससे बातें करते ना वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, राइट। झुकाव, उसकी कोई चीज आ रही है तो हम सारा काम छोड़ के वो काम देखने बैठ जाएंगे। प्रभाव, कोई बड़ा है छोटा है जिसकी उसकी इससे हम इंप्रेस्ड हो जाते हैं, बाबा को छोड़ के उससे इंप्रेस हो जाते हैं। और टकराव, जिसने हमारे साथ कुछ गलत किया कुछ, तो हम उसको मन में बैठा लेते हैं कि इसने हमारे साथ गलत किया, इसको माफ नहीं करते, राइट। तो इसकी छोटी सी बात भी हमारा कान एकदम उस तरफ जाता है, तो उस समय बाबा याद है, कान उस तरफ गया तो बाबा याद है, बाबा याद नहीं ना। तो इसलिए हमारी जो ये चारों चीजें छोड़नी पड़ती है, राइट। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये विकर्म माना, ये विकर्म तो कितने विकर्म किए होंगे। अच्छा, बाबा के बनने के बाद कितने विकर्म किए होंगे, एक दिन में कितने करते हैं। बाबा का बनने के बाद जो विकर्म किए कितना हो गया, 100 गुना हो गया, कितना हो गया। तो 63 जन्म के तो अलग, 62 के तो अलग, ये जो 63वां है इसके कितने हो गए, 63 से ज्यादा हो गए, नहीं हो गए, नहीं नहीं ऐसा हो गया। तो अभी हमको बहुत सीरियस होकर के इसको करना है, राइट। मतलब ऐसे नहीं कि चलो हो गया आधा घंटा सुबह अमृत वेला कर लिया, शाम को आधा घंटा योग कर लिया, एक घंटा मुरली सुन ली और शाम को सोने के पहले गुड नाइट कर ली बाबा को, सुबह उठे गुड मॉर्निंग हो गई, चलो ओम शांति, बहुत बढ़िया, हम तो बहुत अच्छे राजयोगी हैं, ठीक है। खाना थोड़ा बाबा की याद में बना ले, भोग लगा लिया, खाना खाते खाते बातें भी कर ली, खाना खाते 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 ही बात की, बनाते ही बातें कर ली, बाबा का भोग लगा लिया, बाबा का भोग खा लिया, चलो जी। और गुरुवार को थोड़ा ज्यादा भोग खा लिया, नहीं वहां भी बना लिया, घर में भी बनाया, थोड़ा ज्यादा हलवा बनाया, थोड़ा सा कुछ भी बनाया, थोड़ा अच्छे से खाया, सेंटर पे थोड़ा मिलता है ना, तो वहां पे घर पे थोड़ा अच्छे से खाया, नहीं। और शुगर की बीमारी है, भले शुगर की बीमारी है तो गुरुवार को जरूर भोग खाना, नहीं बाबा का भोग है ना, भले शुगर 400 हो जाए, नहीं ऐसे नहीं करते। क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे, मैंने कहा शुगर कैसे बढ़ी, कहती वो डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि बाबा का भोग था, तो बाबा का भोग तो खाना पड़ता है ना, बाबा नहीं तो नाराज हो जाता है। मैंने कहा बाबा भी नाराज होता है क्या, मैं तो ऐसी ऐसी बातें लोग बताते हैं, दादी ने टोली दी ना तो टोली खा ली इसलिए शुगर बढ़ गई। मैं दादी ने कहा था टोली सारी खा लेना, देख यहां से भी तो खा सकते थे ना, यहां से खाने जरूरी थी क्या, आप देख यहां से ले खा के और दूसरे को दे देते, उसका भी कल्याण हो जाता। पूछ रहे थे तुम्हें शुगर की बीमारी तो नहीं है, फिर नहीं है तो दे देते थे, नहीं ऐसा। तो ये हमको बहुत मतलब सीरियस होना पड़ेगा कि हमारा जो विक्रम का बोझा कितना है हमारा, और विक्रम विनाश होने के लिए हमने हमने ये जो स्थिति बताई ना, मुझे बाबा की याद रहती है, ये तो सोल कॉन्शियस थोड़ा थोड़ा बाबा के पॉइंट याद रह गए, बाबा ने मुरली में क्या कहा, इससे विक्रम विनाश नहीं होते। विक्रम विनाश करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत पावरफुल याद चाहिए, बीज रूप स्थिति वाली याद चाहिए, राइट। और विक्रम विनाश सिर्फ अमृत वेले ही हो सकते हैं, राइट। दोपहर में करो शाम को करो उससे विक्रम विनाश नहीं होंगे, कितना मर्जी योग लगा लो, सिर्फ अमृत वेले ही हो सकते हैं। और अमृत वेले योग पावरफुल किसका होगा, अमृत वेला पावरफुल किसका होगा, जिसको सारा दिन इसने बाबा को याद किया होगा, हर कदम बाबा की श्रीमत पे उठाया होगा, सुबह से शाम तक इसने दिनचर्या में जरा भी ऊपर नीचे नहीं किया होगा, उसको अमृत वेला अच्छा, अमृत वेला इनाम है। सारा दिन बाबा की श्रीमत पे चलने का इनाम क्या है? अमृत वेला। और जिसका अमृत वेला अच्छा हो गया उसका अगला दिन भी अच्छा हो जाता है, जिसका अमृत वेला खराब हो गया उसका दिन भी खराब हो गया, नहीं ऐसा? तो क्या करना चाहिए? तो थोड़ा सा मैं ज्ञान की समझ पे जाता हूं पहले, ठीक है? ज्ञान की गहराई है ना, ज्ञान की गहराई पे फिर जाके फिर हम आगे इस पे चलेंगे। इसके भी पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारे पांच स्टेप में हमें चलना होता है। पहले विक्रमा, पहली स्टेज हमारी जो फरिश्ता बनने तक हमारा एम क्या है? ब्राह्मण बन गए। अच्छा, ब्राह्मण की डेफिनेशन पता है आपको? मनुष्य से ब्राह्मण हम पूरे बने? ब्राह्मण पूरे बने कि नहीं बने बताओ? ब्राह्मण, अच्छा मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य माना मन के वश में, जो मन के वश में रहते हैं ना उसे मनुष्य कहते हैं, ठीक है? और जो ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण। ब्रह्मा किसे कहते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा माना बेहद, ब्रह्मा माना बेहद, बड़ी मां, बेहद की मां, सबकी मां, राइट? और ब्राह्मण माना ब्रह्मा माना बेहद मन, जिसका मन और बुद्धि बेहद में रहता हो, राइट? मन और बुद्धि कहां रहती हो? बेहद में। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा शरीर है, मेरे को डायबिटीज है, मेरा हार्ट खराब है ना, मेरे बच्चे का एग्जाम होने वाला है, वो फेल ना हो जाए, नहीं? हद में जाएंगे ना, हद में गए तो हम ब्राह्मण ही नहीं है। बेहद की बुद्धि और बेहद का मन, हमेशा बेहद की बेहद खबर रह सकते हैं जब बेहद बाबा की याद रहे। आत्मा बेहद है ना, आत्मा बेहद है, बाबा बेहद है, हमारे संबंध बाबा से कैसे कैसे हैं? बेहद है, हर संबंध बाबा से हो सकता है, और ड्रामा बेहद है। तो ज्ञान का सार क्या है? ABCD है ना, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा, राइट? तो ये जो ABCD ना, ये बेहद है। तो जिसकी बुद्धि में निरंतर ABCD चलता रहे ना, घूमता रहे, रिवाइज होता रहे, रियलाइज होता रहे, अनुभव होता रहे, तो वो है ब्राह्मण। जिसकी बुद्धि में निरंतर ज्ञान का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण चलता रहे, वो है ब्राह्मण, राइट? जरा भी देह की तरफ बुद्धि गई, देह के संबंध में बुद्धि गई, देह के संपर्क में बुद्धि गई, देह के स्वभाव संस्कार में बुद्धि गई, देह का स्वभाव क्या है? देह का स्वभाव क्या है? पांच विकार, काम, क्रोध। देह अपनी देह देखते ही, दूसरे की देह देखते ही, देह के बारे सोचते ही क्या होता है? काम विकार नष्ट हो जाता है, क्रोध आ जाएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा। और देह का संस्कार क्या है? आलस्य। सबसे बड़ा संस्कार की आदत क्या देह की? देह की आदत है आलस करना। वो बताया ना 10 बातें मैंने बताई, आलस, अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी और ईर्ष्या, ये आदत है देह की। और फिर देह के पदार्थ, जरा भी इसमें बुद्धि गई इसका मतलब हम ब्राह्मण पूरे नहीं है। अगर हम यही अटेंशन रख लें दिन रात कि मुझे सच्चा ब्राह्मण बनना है, तो क्या होगा? यही अटेंशन रखे, मेरी बुद्धि जरा भी देह में ना जाए, देह के संबंधों में ना जाए, देह के स्वभाव में ना जाए, देह के संस्कार में ना जाए, देह के पदार्थ में ना जाए। इसकी बजाय, ये रखने की बजाय ना जाए, इसकी बजाय पॉजिटिव भी कर सकते हैं। साधन यही चलते फिरते अभ्यास रहे, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरे इनके साथ संबंध नहीं, मेरे संबंध सर्व संबंध शिव बाबा के साथ, राइट? माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, ये 9 संबंध तो मुख्य हैं, कि तो इसके अलावा भी और भी संबंध, जो भी संबंध निभाना चाहो बाबा से, सारे संबंध निभा सकते हैं। तो और फिर ड्रामा के पॉइंट को बार बार याद रखें, कुछ में फंसे नहीं, कुछ में फंस गए तो क्या होगा? कुछ हो गया, मान लो घर में कुछ हो गया, या किसी ने पहले 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 वाली कोई बात याद आ गई तो क्या हुआ? ये संसार रूपी नाटक में हर आत्मा एक्टर है, बाबा उसका डायरेक्टर है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है और बाबा इसको एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। किसके अनुसार? कर्म सिद्धांत के अनुसार। अगर कोई मुझे दुख दे रहा है, क्यों दुख दे रहा है? क्योंकि मैंने दुख दिया हुआ पिछले जन्म में। एक बार याद है बाबा ने मुरली में कहा था, अगर आपका हस्बैंड पति आपकी पिटाई करता है, इसका क्या मतलब है? कि जरूर पिछले जन्म में आपने उसको पीटा हुआ है, इसलिए वापस आपको ब्याज के साथ वापस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई गाली दे रहा है, क्यों गाली दे रहा है? क्योंकि आपने उसको पहले गाली दी हुई है, अभी वो वापस गाली क्यों दे रहा है? क्योंकि पीछे दी हुई है, अब ब्याज के साथ वापस कर रहा है। ब्याज तो लगता नहीं, लगता इंटरेस्ट होता नहीं, होता है ना? आपने एक दी होगी वो दो देगा, उससे चार भी हो सकती है। ब्याज तीन का लग गया हो ना, तीन गुना ब्याज हो जाता है ना, नहीं होता है? आपको पता है आज से 100 साल पहले किसी को आपने 500 रुपए उधार लिया किसी से, सिर्फ 500 रुपया 100 साल पहले पिछले जन्म में, इस जन्म में वो व्यक्ति आपके पास आ गया, कहता भाई साहब मेरा 500 रुपए दे दो और साथ में ब्याज भी लगा, ब्याज है ब्याज भी दे दो। आपने लिया था, याद है? आपको याद तो नहीं आएगा, किंतु मांगेगा हक से। कैसे मांगेगा? आपका बेटा बन के मांगेगा, आपकी पत्नी बन के मांगेगा, पति बन के मांगेगा, माँ बाप बन के मांगेगा। ठीक है, नहीं मांगेगा तो कितना हो गया? 500 रुपया तो ब्याज मूलधन हो गया, और ब्याज पता कितना होता है? इंटरेस्ट रेट से लगाओ तो कितना होता है? एक बार मैंने लगाया था 100 साल का ब्याज, 50 करोड़ रुपया बनता है। सिर्फ 500 रुपया लिया था मैंने, ऐसे दिन ऐसे सोचा, मैंने कहा कितना ब्याज देखते हैं, मैंने किसी से लिया हो क्या पता, देख लूं, चेक कर लूं कि ब्याज कितना दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं। तो 500 करोड़ बन गया, 50 करोड़ रुपया बन गया। तो मूलधन देना तो ठीक है, 500 रुपया भी निकाल के जेब में इस समय नहीं है, बाद में मतलब घर से लेके दे सकते हैं, 500 रुपये देते। पर 50 करोड़ तो मैं सब कुछ बेच दूं ना तो भी नहीं निकलेगा, निकलेगा क्या? तो कैसे देंगे? इतना है अकाउंट। इसलिए मैं पहले आपके सामने क्या रख रहा हूं, कितना होमवर्क है करने का। कई बार हम सोचते हैं हमारा बस कुछ भी तो नहीं ना, ये विक्रम है, बस थोड़ा सा सुबह आधा घंटा याद किया, उसमें भी आधा घंटा में से 20 मिनट सो गए झटके लिए, और 10 मिनट बाबा को याद किया, वो 1 सेकंड 2 सेकंड ऊपर गए परमधाम में, 5 सेकंड सूक्ष्म वतन में रहे, बाकी नीचे आ गए, बाकी ऊपर नीचे करते रहे, नहीं? हो गया ये अमृत वेला, हो गया नहीं? हम मुरली में भी थोड़ा टाइम सो गए, थोड़ी देर जाग लिए, बहन जी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो जाग गए, और जब तक देखा तो मौका आया तो पीछे बैठ के थोड़ा सो भी गए। नहीं होता ऐसे, ऐसे होता नहीं होता, ऐसे ऐसे गाड़ी चलेगी क्या? इसलिए कई बार हम सोचते नहीं कि हमारा कितना काम करना बाकी है हमको, है ना? तो ये हमको समझने की आवश्यकता है कि इसलिए कभी भी इस पे क्या क्यों कैसे करना, इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरे को धोखा क्यों दिया, मेरे को ये सबसे ज्यादा रैंक देश इसमें जाता है। सबसे ज्यादा संकल्प देखो, तीन खजाने सबके पास हैं। एक तो समय सबके पास है, गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, समय सबके पास है। विचार सबको करने आते हैं, अंधे को विचार करने आते हैं, गूंगे को, बहरे को, इसकी टांगे ना हो उसको, सबको आते हैं ना। तो समय, संकल्प और श्वास, जिंदा है तो सांस तो ले रहा है ना, तो तीन चीज सबके पास है। अब ये हमारे जो 90% जो समय जाता है ना, समय, संकल्प और श्वास किस में जा रहे हैं? पास्ट में। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे को ऐसा क्यों किया, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, इसी के विचार चलते रहते हैं। और फ्यूचर माना इनसिक्योर, फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे घर में भी कोई सहयोग नहीं रहता, सेंटर पे भी कोई सहयोग नहीं रहता, मेरा क्या होगा। बाबा को याद करती हूं, बाबा को याद करता तो वो भी अच्छे से याद नहीं आता, वो भी मेरे को कभी गोद में लेता नहीं, कभी कभी गोद में जाती हूं तो थोड़ी देर में कनेक्शन टूट जाता है, क्या करें, तो मैं कहां जाऊं, मेरा क्या होगा, ऐसी हालत। इसी तरह की जो इनसिक्योरिटीज है ना, जो लौकिक में भी कुछ नहीं है, अलौकिक में भी कुछ नहीं है, तो ये जो इनसिक्योरिटीज है ना, इसके विचार हमारे ज्यादा चलते हैं। और हमें मेडिटेशन जो हमें क्या सिखाता है, मेडिटेशन को ये सिखाता है कि हम जो पास्ट और फ्यूचर से कट जाते हैं, पास्ट की जो हमारी जो ऐसे विचार हैं वो हील हो जाते हैं और फ्यूचर की भी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हमको ये समझ के चलना है कि हमें ये जो ड्रामा की जो पॉइंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीसी माना साथी, एबीसी माना साथी, आत्मा बाबा कनेक्शन, एक एक संबंध में हर समय बाबा का साथ अनुभव करना। और डी माना ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, साथी साक्षी है ना। तो एबीसी माना साथी और डी माना साक्षी। तो जितना इसको हम गहराई समझेंगे उतना ही हमारी हम रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम चलते थोड़ा सा ज्ञान के और गहरे में। आत्मा की तीन शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। बुद्धि जो है, बुद्धि में जो जैसे आत्मा जो एक बिंदु है ना, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, कितना सूक्ष्म है, है? दिखाई देता है। तो आत्मा इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है कि अगर एटम होता ना, एटम आत्म परमाणु होता ना, हर चीज एटम से बनी हुई है, तो एटम दिखाई देता है क्या? माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देता है। और एटम से छोटा क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से छोटा क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से छोटा प्रोटॉन। प्रोटॉन से छोटा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन से भी छोटा क्या होता है? बोजोन। बोजोन क्या होता है? स्ट्रिंग के रूप में होता है, वो भी एनर्जी के फॉर्म में जैसे है। और हमारे सोच से ऊपर, मैं सोचू ना कि ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है, मतलब हमारे विचारों से वो चेंज होता है। और आत्मा तो पांचों तत्वों से परे है, राइट? मतलब ये तो मॉलिक्यूल का भी छोटी फॉर्म है, और आत्मा तो तत्व है ही नहीं, मैटर ही नहीं है, परमाणु से भी अति सूक्ष्म है और बोजोन से भी अति सूक्ष्म है। वो तो है ही एनर्जी, क्या है वो? क्योंकि हमारे भाई बहन गलती क्या करते हैं, यथार्थ की जब बात मैं कर रहा हूं तो कई बार आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं, बिंदु के रूप में देखने की, विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा कि विजुलाइज करो या इमेजिन करो। बाबा ने कभी किसी मुरली में कहा है? मैंने बताए सुदर्शन, मैंने बताओ, आप कभी बोला है बाबा ने कि बच्चे तुम ये आत्मा को बिंदु विजुलाइज करो? बाबा ने हमेशा कहा बच्चे रिवाइज करो बाबा जो बताता है और उसको रियलाइज करो। ये हमारे भाई बहनों ने क्या किया, इमेजिन करो और विजुलाइज करो। विजुलाइज किस बात को कर सकते हैं? जो चीजें आंखों से देखी हुई है, विजुअल माना जो आंखों से देखी हुई है, उन्हीं चीजों का विजुलाइज कर सकते हो। तो आत्मा को कभी देखा हुआ आपने? जो आत्मा को आप विजुलाइज कर सकते हो। परमात्मा को कभी देखा है आपने, जो विजुलाइज करोगे परमात्मा को? बाबा रोज रोज मुरली में आता है, आप आत्मा को देख नहीं सकते, परमात्मा को देख नहीं सकते। आत्मा भी विचित्र है, परमात्मा भी विचित्र है, फिर क्यों विजुलाइज करते हैं हम? यथार्थ याद इसलिए नहीं टिकती है, इसलिए हम 20 साल ज्ञान में चलने के बाद आज भी गुस्सा करते हैं। विक्रम विनाश, बिजली आई नहीं रही, हम लोग प्लग लगा के बैठे हैं, करंट आई नहीं, हम सोचे करंट आ रही है, करंट तो आ नहीं रही, विक्रम तो विनाश नहीं हो रहे, क्योंकि हमारी विधि यथार्थ नहीं है, राइट? तो ये जो है हमें बहुत बहुत गहराई समझना कि हमें ना बाबा ने जो नहीं कहा ना, बाबा ने मुरली में याद है पहले पेज में शायद 11वीं 12वीं लाइन में क्या है, जो बाबा से सुना है बाबा से ही सुनो, किसी और से मत सुनो, जो मैं सुना रहा हूं वो भी नहीं सुनो, ठीक है? क्लास वाली बात भी नहीं सुनो, कौन सी वाली बात सुनो? जो बाबा सुनाते हैं सिर्फ वही सुनो। तो मुरली हमारे जीवन का आधार होनी चाहिए, मुरली के अलावा कुछ और सुनना भी पाप है, क्योंकि जो भी सुनाएगा कुछ ना कुछ अपनी बात मिक्स करके सुनाएगा। कहां कहां से पढ़ा है हमने, कहां कहां से कुछ इंग्लिश की किताबें पढ़ते हैं, कुछ इसकी पढ़ते हैं, कुछ उसकी पढ़ते हैं, फिर मिक्स करके ज्ञान सुना देते हैं। और कंफ्यूज बेचारे स्टूडेंट्स, कंफ्यूज। तो बाबा की बाबा ने कहा सिर्फ मैं ही सत्य हूं, बाकी सब क्या है? गॉड इज ट्रूथ, है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सदा सत्य है, सत्य माना अविनाशी है, एटर्नल है। और शिव ही सदा पवित्र है, सुंदर। शिव ही सदा सुंदर है, शिव ही सदा पवित्र है, बाकी तो हम क्या होते हैं? हम तो कभी श्याम है, कभी सुंदर है, है ना, नहीं बदलते रहते ना। सुंदर सिर्फ सुंदर में ना, पवित्र सदा वही सुंदर है। तो बाबा ही एक सदा सत्य है, और बाबा की मुरली सदा सत्य है। बाकी जो भी चीजें हैं ना, उसको आप मुरली को अपना आधार बनाओ तो यथार्थ याद बैठेगी, ठीक है। मुरली के अलावा कोई भी चीज को आधार बनाओगे तो आप यथार्थ नहीं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। जाना था हाईवे पे, गली में घुस जाओगे, और गली में घुस से कहां पहुंचोगे? परमधाम नहीं, किसी घर में पहुंच जाओगे, है ना, नहीं पहुंच जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसलिए याद रखो कि बाबा की मुरली जो है वो यथार्थ। तो बाबा की जो, बाबा ने जो कहा उसको हम एक्यूरेट, उसका मनन चिंतन मंथन और सिमरण करें। तो मैं आपसे यहां पर बात कर रहा था कि बाबा जो हमें, जो आत्मा जो अति सूक्ष्म बिंदु है, तो उस अति सूक्ष्म बिंदु की से सात एनर्जी निकलती रहती है। कौन सी एनर्जी? सात एनर्जी कौन कौन सी है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। इन सात के आधार पर शब्द आया सतो प्रधान। सतो, सतो प्रधान माना सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर, सात से भरपूर, राइट। तो जो आत्मा से जो सात एनर्जी निकल रही है, और जब सतो प्रधान स्टेज है तो उसे पावन कहते हैं। जब सातो एनर्जी कम हो जाती है बहुत, तो विकार आने शुरू होते हैं, और जब सातो एनर्जी ना के बराबर तो तमो प्रधान बन गया, तब उसको पतित कहते हैं, राइट। तो जब आत्मा सातो एनर्जी निकाल रही है, तो जहां पर सात एनर्जी सबसे ज्यादा है, शुरू में जैसे आत्मा यहां पर है ना, अभी आत्मा यहां से, यहां पर आत्मा है क्या? यहां पर नहीं है, यहां से ढाई इंच अंदर है, और यहां से तीन इंच नीचे है, ठीक है। यहां से ढाई इंच अंदर, यहां से तीन इंच नीचे। तो आत्मा हाई, दोनों ब्रेन है ना, राइट और लेफ्ट ब्रेन, उसके बीच में एक, उसका भी ब्रेन है, उसका भी कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस, वहां पर आत्मा बैठी हुई है। और हाइपोथैलेमस से एक गर्म तार एक ठंडी तार बॉडी में जाती है। गर्म तार माना जब भी कोई चिंता होगी, गुस्सा आएगा, जल्दीबाजी होगी, कोई खतरा आएगा, तो लाल तार एक्टिव हो जाएगी, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। एक हरी तार, जब जब शांति होगी ना, कुछ खतरा नहीं होगा, तो हरी तार एक्टिव हो जाएगी। और इसके अंदर हाइपोथैलेमस में घड़ी लगी हुई, नेचुरल घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। उसमें किस समय सोना, किस समय उठना, किस समय खाना खाना, किस समय नाश्ता, लंच डिनर, किसमें मेडिटेशन करना, उसका भी टाइम फिक्स है, राइट। और इसी से हमारे हार्मोन्स का कनेक्शन है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जितने भी हार्मोनल ग्लैंड्स है ना हमारे, उसका भी कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस के नीचे। पिट्यूटरी है, पीछे पीनियल है, यहां पे थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड और गोनेड्स। तो ये हमारी ग्लैंड्स है। तो पूरा हाइपोथैलेमस क्या है? बेसिकली सारे ही बॉडी का कंट्रोल रूम है। तो इस कंट्रोल वाली सीट पे आत्मा आके बैठती है, और उसे कैसे चलाती है? इन सात एनर्जी से चलाती है, ठीक है। मतलब ये ज्ञान की गहराई थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि आत्मा ऐसी जगह बैठी है, अगर आत्मा के पास सात एनर्जी है तो क्या होगा? दोनों ब्रेन ठीक काम करेंगे, आपका गर्म तार ठंडी तार का बैलेंस रहेगा, आपकी घड़ी ठीक चलती रहेगी, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, आगे पीछे नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अमृत वाला मिस हो जाए, रात को टाइम के बजाय दस की बजाय बारह बजे सोए, 10 बजे सोते ही नींद आएगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ऐसा नहीं कि सपने आते रहे, ऐसा नहीं कि आपको विचार चलते रहे। सात गुण है तो आत्मा के पास, कम है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये है तो आपके हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा, ये जो हार्मोनल का एक तरह का ऑर्केस्ट्रा है, ये सात ग्लैंड्स हैं यहां पे, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल, गोनेड्स। ये सात, जैसे अगर ये सात ठीक चल रही हैं तो आपका जीवन कैसा है? संगीत के समान है, इन सातों की हार्मनी है। तो अगर इसमें ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, आपका जीवन कैसा बन जाएगा? शोर हो जाएगा, शोर, केओस। शोर होता, शोर में कैसे कान खराब हो जाते हैं ना, सिर दर्द हो जाता है ना। ऐसा ही जीवन जब हमारा अगर सातों ठीक चल रही है तो फिर हमारा क्या होगा, जीवन कैसा हो जाएगा? संगीत माना, जीवन में रस लगेगा, सुख महसूस होगा, प्यार महसूस होगा, आनंद महसूस होगा, नहीं तो आनंद महसूस नहीं होगा। उदासी आएगी, टेंशन आएगी, दुख में दुखी महसूस करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात पे हम इरिटेट हो जाएंगे, है ना? ठीक है, तो आत्मा यहां बैठी है, तो इसी को दिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये वाला दिल नहीं, ये आत्मा का दिल है। ये जो सात एनर्जी है जहां सबसे मैक्सिमम है, उसको हम कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं, या कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, दिल भी कहते हैं। ठीक है, कहते दिल एक मंदिर है, इस दिल रूपी मंदिर में आत्मा बैठी है, मूर्ति है ना, राइट। ये दिल मंदिर है क्या? ये दिल मंदिर नहीं है। तो ये दिल की बात है, जब हम किसकी बात करें तो ये दिल, और इन सात गुणों से बनता है विवेक। क्या बनता है? विवेक माना विजडम, परखने की शक्ति बनती है। क्या बनती है? परखने की शक्ति, विवेक। और जब सात गुण है तो विवेक ईश्वर जैसा है, और उससे बनता है बुद्धि, बुद्धि माना निर्णय शक्ति। तो दिल, फिर विवेक, फिर निर्णय शक्ति, और उसके बाहर होता है चित्त, जिसको इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अगर हमारा दिल में सातों गुण भरपूर हैं, तो हमारा विवेक कैसा है? ईश्वरीय है। और चित्त हमारा, और हमारा बुद्धि क्या है? डिवाइन, दिव्य बुद्धि है। दिव्य माना दैवी गुणों पर आधारित, सत्यता पर आधारित, पवित्रता पर आधारित, निर्भयता पर आधारित। निर्भयता माना क्या होता है? निर्भय कौन रह सकता है? माताएं बहुत डरती है ना, जिनको डर नहीं लगता हाथ उठाओ, जिनको बिल्कुल डर नहीं लगता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता, चाहे सामने चूहा आए, चाहे काकरोच आए, कपड़े पे चढ़ जाए, कोई बात नहीं। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ माताएं, बाकी सबको डर लगता है। तो डर तो भाइयों में कितने लोग हैं जिनको डर बिल्कुल नहीं लगता हाथ उठाओ, बिल्कुल डर नहीं लगता, चाहे सामने भूत आ जाए। निर्भयता माना, बाबा ने बताया निर्भयता की डेफिनेशन बताइए, जिसकी एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। बताओ कौन सी आंख में शांति धाम, कौन सी आंख में सुख धाम, बताओ? दाई में के बाई में है जी? दाई में शांति धाम, बाई में सुख धाम। और किसी का आंसर है कोई? बहने बताओ, टीचर्स बताएं। दोनों आंखों में शांति धाम, सुख धाम। पर बाबा ने एक आंख में क्यों बोला? एक आंख में शांति धाम, दूसरे में सुख धाम है जी। लेफ्ट में शांति धाम, राइट में सुख धाम। बाबा शरीर से बात कर रहा है, आत्मा से बात कर रहा है? आत्मा की दो आंख कौन सी है? बुद्धि और मन। बुद्धि में बुद्धि रूपी आंख में शांति धाम, और मन रूपी आंख में सुख धाम, राइट। जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए तो बाबा ने क्या दिखाया उनको? बच्चे दुनिया विनाश होने वाली है और तुम्हें क्या जाना है, अभी घर जाने का समय। तो बाबा की बुद्धि कहां लग गई? शांति धाम में लग गई, राइट, बाप में और शांति धाम में लग गई। फिर बाबा को सुखधाम दिखाया, स्वर्ग दिखाया, बच्चे तुमको ऐसी दुनिया बनानी है और तुमको ये बनना है, विष्णु बनना है, नारायण बनना है। तो बाबा का मन कहां लग गया? कहां लग गया? सुखधाम में लग गया, राइट। आज की मुरली में भी एक पॉइंट है ना? याद है मनमनाभाव मध्याजी भाव है ना, याद है ये लाइन? मुरली सुनी थी क्या? भूल गई? मनमनाभाव मध्याजी भाव। तो बाबा की जो हमारी जो मतलब एक आंख में हमारी बुद्धि में क्या रहना चाहिए? सिर्फ शांति धाम रहना चाहिए, बाबा और शांति धाम याद रहे बुद्धि में, मतलब यही चलता रहे। और मन में चार बातें होती हैं, कौन कौन सी? उसे इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। हिंदी में कहेंगे तो संकल्प, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति। उल्टा बोलेंगे तो क्या होगा? स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, राइट? तो मैंने बताया बुद्धि के चार एस्पेक्ट हैं। उसमें पहला दिल है, दूसरा विवेक है, तीसरा बुद्धि है, बुद्धि या निर्णय शक्ति है, चौथा चित्त है, और फिर उसके उसके आसपास मन है। मन के भी चार एस्पेक्ट है, पहला स्मृति, फिर वृत्ति, फिर भावना और संकल्प। ये हमारा मन और बुद्धि ये है, और जो स्मृतियां हैं यही संस्कार हैं। जो चीज हम बार बार करते हैं ना इन कर्मेंद्रियों से, वो संस्कार बन जाता है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि ये ज्ञान की गहराई अगर समझ जाओ तो फिर क्या होगा, फिर विकार विनाश करना बहुत सहज है। यही हमारा सूक्ष्म शरीर है। यही क्या है हमारा? ये मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, ठीक है? अब इस जन्म में जो भी हम सपोज, अब मैंने जैसे आपको बताया कि जब आत्मा सत्व प्रधान है, जब आत्मा द्वापर में आती है, सत्य जब त्रेता युग पूरा होता है, देह अभिमान आता है, पहले पहले बॉडी कॉन्शियसनेस आती है, और पहले पहले जब विकार में गिरते हैं तो क्या होता है, आत्मा की एनर्जी कम हो जाती है। तो उससे पहले आत्मा राजा होती है। राजा माना, आत्मा राजा है, स्व माने राजा, स्व माने आत्मा, तो स्वराज्य अधिकारी है। सत्युग में, त्रेता में हर आत्मा स्वराज्य अधिकारी है। आत्मा का राज्य किस पे है? मन पे है, बुद्धि पे है, संस्कारों पे है, पांचों कर्मेंद्रियों पे है, और हमारे आठों अंगों पर है, ठीक है? शरीर के हर अंग पे कंट्रोल है। आत्मा सबको नरिश कर रही है। किंतु जब आत्मा की एनर्जी 49% हो जाती है तो क्या होता है, द्वापर युग शुरू होता है, और आत्मा की एनर्जी कम हो गई तो मन, अब मन के पास कितनी एनर्जी हो जाती है? 51%। आत्मा की हो गई 49% और मन की कितनी हो गई? 51। तो मन राजा बन जाता है। फिर आपको पता, शेयर जो कॉर्पोरेट होता है ना, कॉर्पोरेट फैक्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, वहां भी जिसके शेयर सबसे ज्यादा होते हैं वही एमडी बनता है, ठीक है? तो अब एमडी कौन बन गया हमारा? मन राजा बन गया, और आत्मा क्या बन गई? उसे कंट्रोल में चलेगी, राइट? आत्मा कब्र में चलेगी, माना देहबान में चलेगी, राइट? अब जो है मन का कनेक्शन किससे है? पांचों कर्मेंद्रियों से। फिर बाहर की चीजें देखती है, देह की चीजें देखेगी, देह के संबंधों को देखती है, देह के पदार्थों को देखती है, देह के स्वभाव संस्कार। अब वो हमारी कॉन्शियस, हमारे दिल में चले जाते हैं। उसके पहले दिल में क्या था? सिर्फ मैं आत्मा हूं, और सूक्ष्म में ये था कि मैं परमात्मा की संतान हूं, किंतु बोलते नहीं है। वहां पर सत्युग में बोलते हैं कि मैं परमात्मा की संतान हूं, अंदर है, संस्कारों में चला जाता है मैं, और हमारे संबंध और सब पदार्थों सबके बारे में ना, ड्रामा के बारे में भी अंदर संस्कारों में है, किंतु बोलते नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो वहां कुछ होता ही नहीं ऐसा कुछ, जो हुआ इसको हम अच्छा बोले, सब अच्छा ही अच्छा होता है ना, तो अच्छा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए वहां पर ऑटोमेटिक हमारा ऐसी स्थिति है। तो अभी जो है, जब हम द्वापर युग में आए, मैं आपको इसलिए ये, जब हम द्वापर युग में पहली बार आते हैं, और जब पहला जन्म, 22वां जन्म जो लेते हैं, जब ऐसा हमारे अंदर दिल में, हमारी कॉन्शियसनेस में जब ये देह चली गई, देह के संबंध जाने लगते हैं, देह के स्वभाव संस्कार जाने लगते हैं, देह के पदार्थ जाने लगते हैं, आत्मा की एनर्जी कम हो जाती है, तो विवेक कैसा हो जाएगा? विवेक माना प्रखनिक शक्ति। तो प्रखनिक शक्ति कैसी हो जाएगी? अंदर की जो हमारी जो दिल है, जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, ज्ञान बोल रहा है कि ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं करना चाहिए, और जो देह अंदर चली गई और देह के संबंधी चले गए, जिसको आप प्यार करते हैं, सो कॉल्ड प्यार, जिनकी देह से प्यार हो गया, वो बोली नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, उसी की बात है। तो आप परख सकते हो ठीक है गलत है, तो आपकी विजडम क्या होगी? कंफ्यूज हो गई। विवेक कंफ्यूज हो गया, नहीं हो गया? और बुद्धि क्या हो गई? भ्रष्ट हो गई। अब बुद्धि दिव्य है क्या? अब बुद्धि निर्णय कर सकती है क्या? अब वो फाइल कहां जाएगी? आपने निर्णय नहीं किया। जैसे घर की सिचुएशन ले लो, आपको ही बात है, आपका बच्चा है, वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, चलना चाहिए उसको, या आपकी युगल है, वो ठीक से जैसे करना चाहिए ऐसा नहीं करती है, या आपका हस्बैंड है, ऐसा नहीं समझना, मैं भाइयों की बात कर रहा हूं, हस्बैंड भी ऐसा, आपको बोलना है उसको कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपका मुंह है बच्चे के साथ, तो बच्चे को क्या बोलोगे? वो दिल में है बच्चा, कॉन्शियसनेस में घुस गया ना अंदर कि मेरा बच्चा है, तो आप क्या करोगे? उसी गलत बात भी क्या करोगे? उसको भी ठीक पर, गलत कर रहा है तो भी उसको ठीक ठीक बोलोगे, ठीक परखोगे, निर्णय नहीं कर पाओगे तो फाइल कहां गई? वो वाली फाइल वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी, चित्त में चलेगी, राइट? तो जब हम द्वापर युग में आते हैं तो ऐसे बहुत सारी फाइलें सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगती हैं। सत्युग के अंदर हमारा दिल, दिल में सत्य है, दिल में सात गुण भरपूर है, तो हमारा दिल हमारा सत्य है, विवेक हमारा ईश्वरीय है, बुद्धि दिव्य है, तो हमारा चित्त शांत एकाग्र और आनंदमय है। मतलब हमारी सत्युग में कैसी स्थिति है? सच्चित आनंद स्वरूप है। जैसे ही द्वापर शुरू होता है, आत्मा के अंदर एनर्जी कम होती है तो हमारे अंदर क्या होने लगता है, क्या होने लगता है? आत्मा की एनर्जी कम होने से और मन राजा बन जाने से, मन पांचों कर्मेंद्रियों के द्वारा देख करके चीजें दिल में डालता जाता है, कॉन्शियसनेस में भरती जाती है, देह हमारी दिल में भर जाती है, देह के संबंध दिल में भर जाते हैं, देह के स्वभाव संस्कार दिल में भर जाते हैं। क्रोध करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं तो हमारा राज्य लूट लेंगे, हमारा ये कर देंगे, हमारे इसको ऐसा कर देंगे, ये चीज इतनी तो मुझे चाहिए ही, मुझे महल बनाना है इसके लिए इतना तो चाहिए, अत्याचार करेंगे दूसरों के ऊपर, है ना, अपने बच्चों से मोह होगा, है ना, अहंकार जो बना लेंगे उसका अहंकार हो जाएगा, तो अंदर आ गया, दिल में आ गई ना ये बातें, तो वो जो दिल में आया उसके कारण विवेक कंफ्यूज हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब जो फाइलें निर्णय नहीं कर पाती बुद्धि, वो फाइलें कहां जाएंगी? सीधी सबकॉन्शियस माइंड, चित्त में जाएंगे। कंप्यूटर में जैसे अगर आप जो फाइलें सेव नहीं करते वो कहां जाती हैं? स्पैम में चली जाती हैं, डस्टबिन में चली जाती हैं। तो ऐसे हमारा चित्त बड़ा होने लगता है सत्य। तो जब चित्त ऐसा बड़ा होता है तो चित्त हमारा क्या हो जाता है? चंचल हो जाता है, अशांत और चंचल हो जाता है। सत्युग में हम जो विचार करते हैं वो विचार हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब विचार फालतू विचार चलने शुरू होते हैं द्वापर से, राइट? अभी सबकॉन्शियस माइंड, जब मैंने 22वां जन्म लिया, इकट्ठा किया, चित्त मेरा चंचल हुआ, अब जब 23वां जन्म लूंगा तो ये 22वां जन्म का जो है ना हमारा चित्त, वो क्या बन जाएगा? अनकॉन्शियस माइंड बन जाएगा। अब इसके हिसाब से 22वें जन्म के जो मैंने पाप किए, इसी के अनुसार पाप हुए ना, मैंने बच्चे को गलत काम करने दिया, युगल को गलत काम करने दिया, दोस्तों को गलत काम करने दिया, किस लिए? क्योंकि मेरे को पैसा इकट्ठा करना था, किसी से मोह पूरा करना था, अहंकार पूरा करना था, क्रोध करना था, तो उसके लिए मैंने ऐसा किया। तो अब ये जो पाप कर्म के अनुसार मुझे अब दूसरा 23वां जन्म मिलेगा, 23वां जन्म मिलेगा तो फिर क्या होगा? फिर 23वें जन्म में जो मैंने पाप इकट्ठे करूंगा वो सबकॉन्शियस में जाएगा, वो 24वां मिलेगा, तो 22 और 23 क्या बन जाएगा? अनकॉन्शियस बन जाएगा, ठीक है? तो धीरे धीरे ऐसे अनकॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाएगा और अनकॉन्शियस माइंड के आधार पर हमको अगला जन्म मिलता जाएगा। इसी तरह से आप 83 जन्म, हम 84वें जन्म में अब आ गए, तो हमारे पास कितने जन्मों का सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है? 62 जन्मों का। उसमें क्या भरे हुए? पाप कर्म भरे हुए। और इस जन्म का, इस जन्म में पाप किए वो सबकॉन्शियस माइंड है, चित्त हमारा चंचल है, राइट? तो देवता जो होते हैं, फरिश्ते जो होते हैं, उनका 100% माइंड कैसा होता है? कॉन्शियस होता है। उनका सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता है, उनका अनकॉन्शियस माइंड नहीं होता है, राइट? क्योंकि अनकॉन्शियस में भी गलत चीजें, सबकॉन्शियस में भी गलत चीजें भरी, अधिकतर भरी हुई है। वो हमें इस समय, हम चाहते हैं बाबा को याद करना, बाबा को याद नहीं कर पाते, वो बात हमारे सामने आ जाती है, ठीक है? तो अभी क्या तरीका होगा कि हमारा ये सबकॉन्शियस भी खत्म हो जाए, अनकॉन्शियस भी खत्म हो जाए? क्या करें? अब बाबा को अपने, पहले तो बात है, बाबा ने 5 स्टेटमेंट इशू किए हुए हैं गीता में भी, और बाबा बार बार मुरली में बताते हैं। बाबा कहते हैं पहला स्टेटमेंट पूरा करो, दूसरा स्टेटमेंट शुरू होगा, दूसरा पूरा करो, तीसरा शुरू होगा, तीसरा पूरा करो, चौथा शुरू होगा, चौथा शुरू पूरा करो तो पांचवा पूरा शुरू होगा। तो पहली बात जो है, नहीं तो क्या होता है, हम लोग 20-30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं तो आज भी हम लोग आत्मिक देही मानी स्थिति में नहीं आ पाते। बार बार जब योग करने बैठते हैं, बार बार अपने आपको रिमाइंड करते हैं मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। MBBS में दाखिला हो गया, अभी किताब पढ़ने से पहले बोलते A for apple, B for bat, C for cat, ने फिर किताब पढ़नी शुरू करते हैं। ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जो बाबा ने स्टेटमेंट में आपको बताता हूं, फिर इसके अनुसार विक्रम विनाश कर लेना ना, इसके अनुसार विक्रम विनाश होते हैं। पहला स्टेटमेंट है देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से त्याग करो। बुद्धि से त्याग मतलब बुद्धि में दिल से त्याग, दिल से बाहर निकाल दो। कैसे निकाल सकते हैं, कान पकड़ के चलते फिरते उठते बैठते अपने आप से बात करो हर समय, मैं देह नहीं मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। चलते फिरते अनुभव करो, उसको रियलाइज करो कि मैं ये हूं। फिर देह के संबंध, मैं ये देह के संबंध से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं देह नहीं हूं, इनके से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, मेरा तो सब संबंध शिव बाबा से। एक एक संबंध को अनुभव करो, राइट। फिर देह के स्वभाव संस्कार, देह का स्वभाव क्या है, मैंने बताया पांच विकार, मैं तो आत्मा, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा आत्मा, मेरा स्वभाव तो सात गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियां। एक 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 गुण का अनुभव करो, ठीक है। देख देख के संस्कार क्या बताए, दस बताए ना जो मैंने, ये मेरा आलस, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी आदत नहीं है, मैं तो आत्मा, मेरा संस्कार तो क्या, अलर्ट रहना, अलबेलापन नहीं, एक्यूरेट रहना, दूसरे में दोष निकालना नहीं, सबके गुण देखना, बदला लेने की भावना नहीं, रहम दिल, शक करना नहीं, निश्चित निश्चय सब पर, हम आपस में आत्मा भाई भाई, एक ही बाप के बच्चे हैं, अनुमान लगाना नहीं, क्या विश्वास, चिंता नहीं, निश्चिंत बेफिकर, भय नहीं, निर्भयता, जल्दीबाजी नहीं, धैर्यता, ईर्ष्या द्वेष नहीं, सबसे उदारता, है ना। तो जब हम ऐसे अपने आप को बार बार रिमाइंड करेंगे, देह के पदार्थ नहीं, ये पदार्थ मेरे नहीं, मैं तो आत्मा के पदार्थ क्या है, दैवी गुण, सत्यता, निर्भयता, सरलता, नम्रता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ईमानदार, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान, ये मेरी प्रॉपर्टी है। आत्मा की प्रॉपर्टी ये है, साथ में ये जाएगी, ये तो ये थोड़ा ना साथ में चीजें जाएंगी। तो चलते फिरते अपने आप से ही बात करो, इसका ही अभ्यास करने से फिर हमारे, तो पहले बाबा ने कहा देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से त्यागो, फिर त्याग के फिर अपने को आत्मा समझो, तब एक्चुअली हम अपने को आत्मा समझ पाएंगे। जब तक हमारे दिल में ये बातें, चारों बातें हैं, तब तक हम अपने आप को आत्मा रियलाइज नहीं कर सकते। इनको निकालने के बाद ही हम अपने को आत्मा रियलाइज कर सकते हैं। मतलब देही मान, जो बाबा बार बार मुरली में कहते हैं, देह मान स्थिति बनाओ, फिर देही मान स्थिति बनेगी तो मामेकम याद होगा। मामेकम माने सिर्फ बाबा, सिर्फ मुझे याद करो, मामेकम माने सिर्फ मुझे याद करो, तब हम एक बाबा को, तब बाबा हमारे दिल में आके बैठेगा, दिलाराम। और एक बार दिलाराम दिल में आके बैठ गए तो क्या होगा, दिलाराम कौन है, कौन है, शिव बाबा तो है पर है कौन, वो कौन है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर है। तो जब दिल में आ गया तो क्या होगा, जब वो दिल में आएगा तो हमारे विक्रम क्या चीज है, विक्रम क्या चीज है, जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है, जो हमारी मेमोरीज में, संस्कारों में भरा हुआ है, जो हम कर्म करते आए हैं गलत विकारों के वश, तब वो विक्रम विनाश होंगे, राइट। तो जब तब बाबा कहता है विक्रम विनाश होंगे, तब बैटरी चार्ज होगी, तब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, तब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, तब बाबा से हमारा एक्यूरेट मिलन होगा। जब हम कहते हैं बाबा से बात करके आते हैं, हम बाबा हमसे बात करता है, बाबा कैसे बात करता है, जब मेरी स्टेज अच्छी होगी तभी तो बाबा बात करेगा, मैं विकर्मी हूं और बाबा मुझसे बात करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तो उसके लिए मेरी फ्रीक्वेंसी, शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी के मतलब कितने विचार चलते हैं बाबा को, शिव बाबा को बताओ, शिव बाबा कितने विचार चलते हैं, बच्चे देखो ये कर रहे हैं, बच्चे देखो ये कर रहा है, बच्चा देखो बीमार पड़ा है, बाबा को विचार चलता है क्या, शिव बाबा को 79 इयर्स हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, अभी तक बच्चे सुधरे नहीं, विचार चलता है बाबा को, शिव बाबा कोई विचार नहीं चलता है, ठीक है, जीरो विचार चलता है, इसलिए वो जीरो है, है ना, सर्व पवित्र है ना, सदा पवित्र है। और ब्रह्मा बाबा कितना विचार चलता है, उसको एक विचार चलता है, कौन सा विचार चलता है, मेरे बच्चे मेरे समान बने तो घर चले। कितने सालों के पापा को वहां वेट करते हुए, 46 साल से ऊपर बैठा है इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे आए, मेरे बच्चे आए, मेरे बच्चे बने, बच्चे बनते ही नहीं है। नहीं तो 46 साल से वेट कर रहा है वो ना, तो उसको एक ही संकल्प है। अब मेरे 15 संकल्प चल रहे हैं, 8 विचार तो मेरे ऐसे चल रहे हैं और 8 विचार सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, मैंने ये नहीं किया है, बच्चे को ये करना है, उसको ये करना है, वो मानता नहीं है, वो मानती नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बिजनेस में ऐसा हो रहा है, वो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, बोल नहीं रहा है किंतु अंदर अंदर चल रहा है। तो हमारा कनेक्शन हो सकता है बाबा से? हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जब मेरे 2 विचार हो तब तो बाबा से कनेक्शन होना, तब तो करंट आनी शुरू होगी। नहीं, अब 2 विचार कब होंगे? जो हम रोज सुनते ना मुरली में, मैं बाबा का, बाबा मेरा। नहीं, वो कैसे होगा? जब बाबा ने, अब इस साल की मुरली याद है बाबा की, दादी दादी गुलजार बार बार पूछती है, क्लास में आती ना, मेरे दिल में कौन? मेरा बाबा। फिर दादी दोबारा पूछती है, मेरे दिल में कौन? मेरा बाबा। फिर बाबा दादी फिर पूछती है, बाबा के दिल में कौन? सविता बहन ऐसे पूछती है ना दादी, कितनी बार क्लास में पूछती है, थोड़ी थोड़ी देर में ना, थोड़ी देर बोर्ड की क्लास में यही बात होती है आजकल। तो आप चेक करो, मेरे दिल में बाबा है क्या? है बाबा दिल में? है दिल में बाबा? मैं बाबा के दिल में हूं? अगर मेरे दिल में देह बैठी है, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ बैठे हैं, तो बाबा दिल में है? बाबा दिल में ही नहीं है। तो ये बार बार चेक करने की आवश्यकता है, ठीक है? यथार्थ याद का मतलब है दिल में मेरे बाबा हो, और वो तभी पॉसिबल है जब 4 बातें दिल में से निकालो। तो घर में से नहीं निकालना, दिल में से निकालना, राइट? बुद्धि में से निकालना। तो जितना इसको चलते फिरते अभ्यास करोगे तो फिर हमारी यथार्थ याद, माना यथार्थ याद का मतलब क्या है वैसे डेफिनेशन के परिभाषा के हिसाब से, अपने को आत्मा समझ, आत्मा बिंदी समझ, परमात्मा बिंदी, बिंदी बाप को परम धाम घर में याद करना। कहां पर याद करना? परम धाम घर में याद करना। पर क्योंकि परम धाम घर में ही विक्रम विनाश होते हैं, सूक्ष्म वतन में विक्रम विनाश नहीं होते हैं, राइट? तो वो याद पॉसिबल कभी है, वो अमृत वेले ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब हम गहरी नींद से उठते हैं, तो गहरी नींद से उठते हैं तो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 2-3 होती है, डेल्टा रिदम से हम उठते हैं। तो हम उठते ही अगर गुड मॉर्निंग करके बाबा को बैठ जाएं, मुंह धो के ब्रश करके, है ना, ये भी नहीं ऐसे उठे और बस, कई लोग उठते ही बैठ जाते हैं ऐसे, वो फिर नींद आती रहती है। तो ब्रश करके, मुंह धो के और अलर्ट होके बैठ जाए, हो सके तो कपड़े बदल के बैठ जाए, और फिर अलर्ट सीधी कमर करके बैठ जाएं और बाबा को ये ABCD को ही हम रिवाइज करें, रियलाइज करें, या बाबा की मुरली के जो पॉइंट्स हैं उनको ही रिवाइज रियलाइज करें, चिंतन मनन चिंतन करना शुरू करें, तो हमारे विचार 15 विचार, मतलब अभी तो सुबह सुबह तो है ही 2-3 विचार, तो ऑटोमेटिक हमारे 2 विचार होंगे, 2 विचार माना मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस इसमें तुरंत चले जाओगे आप। सतो प्रधान समय सूक्ष्म वतन में जाओगे, बाबा से बात करोगे, बाबा की गोद में जाओगे, बाबा गोद में जाके, और फिर जब बाबा की याद में लवलीन हो जाओगे तो सिर्फ एक ही विचार रह जाएगा बाबा, और वो बाबा जब खाली यही विचार रह जाएगा तो विचार चलने बाकी बंद हो जाएंगे, तो आप परम धाम में पहुंच जाओगे। परम धाम में जाके ऐसे लाल लाइट नजर नहीं आएगी आपको। कई लोग मुझे आके बताते हैं, डॉक्टर साहब, भाई साहब, लाल लाइट तो नजर नहीं आती, है ना? तो लाल लाइट होती नहीं है ऐसे कोई लाइट, है ना? कल आप विजुअलाइज करते हो, गलत करते हो कि अभी लाल लाइट में पहुंच गया, वो परमधाम नहीं है, राइट? जब आपके विचार, जब आपके ये बाबा में खो गए ना, जब आप, तो परमधाम में पहुंच गए। लाल लाइट को ढूंढो नहीं। सविता बहन ऐसे लाल लाइट दिखाई देते है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो गलत है। मैं इसलिए बता रहा हूं, यथार्थ याद की मैं बात, जब यथार्थ की बात कर रहा हूं ना, मैं यथार्थ याद की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं यथार्थ याद की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। एक तो विजुअलाइजेशन की, जो विजुअलाइजेशन करते हैं ना, वहां लाल लाइट है, वहां सफेद लाइट है, वहां 1000 सूर्य जैसा, चांद जैसी लाइट है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? देखो, अच्छा, क्या है बेसिकली, क्या हो गया, इतना सारा जंबल अप हो गया ना ज्ञान इतना जंबल अप कर दिया है लोगों ने, कंफ्यूजन। बाबा की मुरली से अगर आप जाओ ना सीधे सीधे तो बहुत सिंपल है। जब आप सूक्ष्म वतन का मतलब क्या है, सूक्ष्म वतन का मतलब क्या है, जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो ब्रह्मा की बुद्धि को बुद्धि में ज्ञान डालते हैं, राइट। तो ब्रह्मा की बुद्धि पवित्र हो जाती है और मन को भी बाबा बताया ना मैंने, बुद्धि में क्या डालते हैं शांति धाम और मन में क्या डालते हैं सुख धाम, राइट। तो ब्रह्मा की बुद्धि और मन क्या हो गए, पवित्र हो गए। फिर ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं संस्कार को पवित्र बनाने की। सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म पवित्र मन, पवित्र बुद्धि और पवित्र संस्कार है, राइट। ब्रह्मा बाबा की क्या है, सूक्ष्म पवित्र मन, पवित्र बुद्धि और पवित्र संस्कार ही सूक्ष्म वतन है, समझ गए ये बात। शिव बाबा उसके पवित्र बुद्धि में आके बैठते हैं, ये है बाप दादा। अब बाप दादा की गोद, कई लोग कहते हैं बाबा की गोद हमको ऐसी लगती है, बाबा की गोद में वो विजुलाइज करते हैं बाबा की गोद में हम जा कैसे चिपक गए, है ना। कई लोग कहते हैं आवाज आती है हमको बाबा के पास जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में, उनको बाबा दिखाई नहीं देता है, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, बाबा की गोद ये है कि जब आप, हम सबको दिव्य बुद्धि मिली है, बाबा हमको पैदा करते ही क्या करता है, दिव्य बुद्धि गिफ्ट, लिफ्ट, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट गिफ्ट में देता है। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट माना बाबा हमको पवित्र बुद्धि की लिफ्ट, हमें लिफ्ट देता है कि हमारी बुद्धि में ज्ञान डाल देता है एबीसीडी, या ये जो जो हमारा बाबा सत्य ज्ञान डाल देता है, उस सत्य ज्ञान को जैसे ही हम उसको अंदर से स्विच ऑन करते हैं, मैं आत्मा हूं परमात्मा की संतान हूं, और एक एक संबंध को अनुभव करते हैं, हम बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं। मतलब पवित्र बुद्धि के साथ पवित्र संकल्प किया तो हम कहां पहुंच गए, बाप दादा की गोद में पहुंच गए, राइट। संस्कार अभी पवित्र नहीं हुए मेरे, कि संस्कार कैसे पवित्र होंगे, जब मैं बाबा के पास जाऊंगा, बाबा की गोद में बैठूंगा, बाबा से रूरियान करते हैं, हम बातचीत करते हैं, राइट। जब बाबा से बातचीत करते हैं तो फिर हम, जब बाबा से हमारा कोई मन में संकल्प होता है, हम उसको बाबा से डिस्कस कर लेते हैं, बाबा की फिर, क्योंकि बाबा उसका एक्यूरेट आंसर देता है, फिर हम बाबा की याद में खो जाते हैं, फिर हमारा, हम परमधाम पहुंच जाते हैं। परमधाम ना सिर्फ शिव बाबा याद रह जाता है, बिंदु याद रह जाता है, बाकी सब बातों को बिंदु लग जाता है, सब विचारों को बिंदु लग जाता है, और बिंदु लगने के बाद हम ऐसे नहीं कि हम परमधाम में वैसे पहुंच जाते हैं, राइट। ये सारी बातें ना बहुत ही समझने की हैं गहराई से, इसलिए मैं सोचा ज्ञान, मैं पहले सोचता ज्ञान और योग की गहराई पे बात करूंगा, अभी मेरे को अभी कंफ्यूजन क्या हो गया कि मैं किस पे बात करूं, है ना। नहीं नहीं, मैं ये बातें जो बता रहा हूं ये बातें प्रैक्टिकल गहराई की बातें हैं, राइट। क्योंकि अधिकतर लोग जो बातें करते हैं ये बाबा की मुरलियों में सब इस तरह से बताया हुआ है, नहीं वो गलत बताया हुआ है। इसलिए क्या हो रहा है कि हमारे, मैंने बताया मुझे, मैंने जब मैं एम्स में था ना, ऑलरेडी छोटे मेडिकल साइंसेज में, मैंने स्विमिंग पूल में मैंने स्विमिंग करना सीखा। तो पहले तो मैं कई दिन ना, वो हमारा ट्रेनर कहता था इसको पाइप को पकड़ के आप ना वो हाथ पैर मारते रहो, मैं पाइप को हाथ पकड़ के मारता रहा, 5 दिन हो गए मुझे मारते। तो मैंने कहा भाई अभी कितने दिन मैं ऐसे करता रहूं, कहता नहीं आज आप ट्राई करो कि ना हाथ छोड़ के ना इधर इधर रहना, उधर मत जाना गहरे पानी में, इधर इधर ना कोशिश करो आप हाथ पैर मतलब मारने की, जैसे बताया वैसे करने की कोशिश करो, देखो आप आगे जाते नहीं जाते। तो मेरे को डर तो लग रहा था पानी में, तो मैं आंखें बंद करके ना और मैंने हाथ पैर मारने शुरू किए, और मैंने सोचा मैं काफी दूर चला गया होगा, काफी देर मारता रहा हाथ पैर, और जब मैंने आंख खोली ना तो मैं वहीं पे हाथ पैर मार रहा था ना, 1 सेंटीमीटर आगे गया था ना 1 सेंटीमीटर पीछे गया था। तो कई बार ऐसा भी होता है, यथार्थ याद नहीं करते ना, यथार्थ विधि, बाबा की गहराई में जाओ, बाबा की मूल, और फिर बाबा से वेरीफाई कराओ, है ना। बाबा 3 तरह से हमें ज्ञान देता है, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग। इन्फॉर्मेशन देता है, पहले बताता है बच्चों में, बच्चे में आया हूं, तुम्हें मनुष्य से ब्राह्मण बनाया, आप तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनाने आया और ये तरीका है, राइट। फिर पढ़ाता है रोज मुरली में, फिर समझाता है कब है, जब अमृत वेले वहां पे जाते हो, फिर बाबा एक एक बात, बाबा मुझे ये बात समझ नहीं आई। वो डॉक्टर तो ऐसा बोलता है, वो पेशेंट तो ऐसा बोलता है, बाबा वो आया ना वो तो ऐसे बोलता है, बाबा मैं आपके पास आता हूं मुझे तो ऐसा फील होता है, तो बाबा फिर समझाता है बात का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। तो ये जब आप जाओगे तब आपके विक्रम में, तब क्या होता है, जब आपकी जो जो हाई जितने भी पापक्रम होते हैं ना वो हाई फ्रीक्वेंसी मेमोरी होती है उनकी, काम विकार क्रोध लोभ मोह अहंकार इनमें बहुत तेज विचार चलते हैं। जब आप एक विचार से कम, मतलब बाबा की याद में लवलीन मन, एक विचार से भी कम हो गए, बाबा की याद में खो गए, जब खाली एक विचार रह जाता है तो हाई विचार वाले जो मेमोरीज है वो डिलीट होने लगती है, इसे कहते हैं विक्रम विनाश। उसकी निशानी क्या है, जब वो आप विक्रम विनाश सुबह करोगे, विक्रम विनाश करोगे दिन में, वो आदमी आपको मिलेगा, कल उसको देख के गुस्सा आया था, कल उसने भी गुस्सा किया था, आपको भी देख के गुस्सा आया था, या आपको देख के लगा इसको मैं अवॉइड करूं, आज उस व्यक्ति को देख के आपको याद ही नहीं आएगा कि इसको मैं उसने कल गुस्सा किया था या मैं इसको गुस्सा, आप बड़े प्यार से मिलेंगे उससे, ये निशानी के विक्रम विनाश हो गया। जैसे हमारी बड़ी दादी थी ना, बड़ी दादी के पास जाओ ना, अभी झगड़ा, अभी झगड़ा करके कोई बात दादी को पूछने गए, दादी जी ऐसे ऐसा हमारा ये झगड़ा कोई दो भाई लेके आए, थोड़ी देर में दादी के पास जाओ, मैं भूलने की बीमारी नहीं कह रहा हूं, जब दादी बिल्कुल ठीक थी 2001 में 98 99 में 2001-2 में, क्योंकि एक बार मेरे साथ ये बात मेरे सामने ये बातें होती थी, और फिर जाते थे तो दादी जैसे कोई बात ही नहीं है, दादी ऐसे मिलते जैसे कोई बात ही नहीं हुई, राइट। तो ऐसी स्थिति बन जाती थी, समझ रहे। तो ये हमको पुरुषार्थ करना है, तब हमारे विक्रम विनाश, और 63 जन्मों के विक्रम है, एक दो जन्म के नहीं है, फिर विक्रम विनाश, पहले सबकॉन्शियस माइंड इस जन्म का खत्म होगा, फिर 82वें जन्म का आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड जो अनकॉन्शियस में से वो ऊपर सबकॉन्शियस में आ जाएगा, मतलब आपके आसपास वो वापिस आ जाएंगे, प्रैक्टिकली आपके सामने आएंगे, और फिर उसको विक्रम विनाश करेंगे, उसे सहन करेंगे, समाएंगे, सामना करेंगे, फिर 81वें जन्म का आ जाएगा, फिर 80वें जन्म का आ जाएगा, और फिर ऐसे विक्रम विनाश होते होते एक दिन क्या पहुंचोगे, आप 35वें जन्म पे पहुंच जाओगे। 35वें जन्म में कोई व्यक्ति ऐसा आपके सामने ऐसा आएगा, कर्म बंधन नहीं, वो आपसे गलत काम करा लेगा, फिर वापस 84वें जन्म पे आ जाओगे, ठीक है, फिर विक्रम विनाश शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है, कुछ भी हो जाए चार चीजें अपनी पक्की रखनी है, चार नियम और चार मर्यादाएं पक्की रखनी है। एक तो कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना है, और पावरफुल अमृत वाला, पावरफुल अमृत वाला मतलब कम से कम हमारा 30 मिनट तो पावरफुल, मतलब 30 मिनट बाबा की गोद में होना चाहिए 45 में से, और उस 30 मिनट से 10 मिनट तो कम से कम परमधाम में होना चाहिए, ठीक है, पर उसके लिए सारा दिन बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। दूसरा, कभी मुरली मिस नहीं करो, मुरली घर में नहीं वो पढ़ लो कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, नहीं पढ़ लो या मोबाइल पे सुनो, नहीं, क्लास में आके मुरली सुनो, नहा धो के क्लास में आके, भले घर में पढ़ लो फिर क्लास में बैठ के मुरली सुनो, क्योंकि जब बाबा की मुरली सेंटर पे सुनते हो ना, कोई बहन के द्वारा या कोई भाई के द्वारा, बाबा उसके द्वारा शक्ति भी दे रहा है, क्योंकि खाली मुरली सुनना आवश्यक नहीं है, वो मुरली धारण भी तो हो ना अपने अंदर। दूसरी बात, मुरली क्लास में, घर में नहीं, घर में आपका वातावरण अलग है, आप घर में सुन रहे हो, बीच में बच्चे ने बोल दिया, कान पकड़ लिया आपका, कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, किसी का फोन आ गया, कनेक्शन खत्म। मुरली 45 मिनट बैठ के सामने सुनना है, और ऐसे सुनो बाबा की गोद में बैठ के सुनो। फिर तीसरा, मुरली जो बाबा ने सुनाई उसको जेब में रखो, या तो उसको कागज में लिख लो, और फिर जेब में रख के कहां रखो, बाबा का लव लेटर है, जैसे लव लेटर कहां रखते हैं, क्या रखते हैं, दिल के पास, और लव लेटर कभी पढ़ते हैं, कभी पढ़ते हैं, जब आसपास देखते कोई नहीं है ना, फिर क्या करते हैं, आसपास देखते कोई नहीं है, फिर निकालते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर अंदर छुपा कर देते हैं, नहीं नहीं ऐसे करते, फिर देखते हैं आसपास कोई नहीं है, फिर निकालते तुरंत, और सारा टाइम लव लेटर में बुद्धि लगी रहती है, नहीं लगी रहती है, पता नहीं आप लोगों को कभी अनुभव नहीं होगा अनुभव तो मुझे भी नहीं है वैसे, पर मैंने सुना है ऐसे, है ना, ऐसे। तो दिन में 20 बार 21 बार मैं पूरी मुरली पढ़ने को नहीं कह रहा हूं, मतलब एक एक लाइन, वरदान स्लोगन कितनी, हम तो मुरली अभी तो हमको मुरली मिलती है, किंतु पहले हमको मुरली नहीं मिलती थी, हम क्या करते थे, इतना सा पेज, एक पेज का चौथा हिस्सा, उस पे लिखते थे, लिख के और उसको मीठे बच्चे क्वेश्चन आंसर मतलब वरदान स्लोगन धारणा और कोई इंपॉर्टेंट बात पीछे भी लिख लेते थे, और उसको फिर ऐसे करके जेब में रखते थे। मुरली मतलब हमेशा जेब में ही मिले, जेब में ही रखते थे वो पॉइंट, तो वो जेब में रखते। और फिर बार बार जहां मौका मिला, क्योंकि हम कहां रहते हैं, कलयुग की दुनिया में, तमो प्रधान दुनिया में रहते हैं, हर चारों तरफ माया का वार है। तो ये मुरली जो है ना, ये हमारा कवच है, इसको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, तो ये स्मृति में आएगी। फिर उसके ऊपर मनन करो, सोचो बाबा, रिवाइज करो मन मन में, बाबा ने मुझे ये कहा, बाबा ने, फिर उसको चिंतन करो, चिंता लगाओ, मतलब अंदर से चिंतन माना, मनन रिवाइज करना, चिंतन माना चिंता करो, चिंता माना बाबा ने ये कहा, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूं, मैं कैसे करूं। फिर मंथन करो, मंथन माना फिर इतने खो जाओ उस चिंतन में कि बाबा से बात करनी शुरू कर दो, बाबा फिर आपको हल देगा। फिर सिमरन करो, सिमरन का मतलब फिर काम करते करते उस बात को जो बाबा ने कही उसको काम में लगाओ। सिमरन का मतलब ये नहीं कि बार बार उसको रिवाइज कर लो, सिमरन ना जो बाबा ने पॉइंट बताया उसको फिर कार्य में लगाओ। जैसे बाबा ने कहा बच्चे मीठा बोलो, अब बाबा ने बात निकल के मीठा बोलो, मीठा बोलो माना अब मैं उसको फिर मीठा बोलूं प्रैक्टिकली। बाबा ने कहा मुस्कुराते रहो, अब मैं प्रैक्टिकली मुस्कुराऊं, कैसा मुस्कुराऊं, सामने गाली दे रहा है मैं मुस्कुराता रहूं, रियल में मुस्कुराओ, अपने अपने स्वमान में रहो तो मुस्कुराते रहोगे, वो गाली में खो गए तो उदास हो जाओगे, राइट। तो तब हमारे अंदर ये बात जाएगी। तो पहली बात अमृत वेला, दूसरी मुरली, तीसरा सारा दिन बीच बीच में अटेंशन रखो इस बात का, सोते समय फिर लेटर लिखो बाबा को, सारा दिन जो गलतियां हमसे होंगी, ये नहीं हो सकता गलतियां ना हो, गलतियां होंगी क्योंकि हमें आदत है गलतियां करने की, हम 25 साल पुरानी आदत है हमको गलत काम करने की, गलतियां हमको करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक होती है, संस्कार है ना गलतियां करने का, हमें अच्छा काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और गलतियां करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पता है आपको, एक बार गुस्सा करो 3 दिन तक दिमाग खराब हो जाता है, 3 दिन तक हमारा दिमाग ठीक काम नहीं करता है, और खुश रहो, एक बार खुश हो जाओ, खुशी का असर 2 मिनट रहता है सिर्फ, तो खुशी का असर सिर्फ 2 मिनट रहता है, और एक बार गुस्सा करो 3 दिन तक दिमाग पे असर रहेगा, एक बार उदास हो जाओ 5 दिन तक दिमाग पे असर रहेगा, एक बार टेंशन में आ जाओ 18 घंटे असर रहेगा, और किंतु खुशी का असर सिर्फ कितने मिनट, 2 मिनट। तो हर 2 मिनट में फिर अटेंशन रखना पड़े, नहीं क्योंकि रावण की दुनिया है ना, तो रावण की दुनिया में अटेंशन रखना पड़ता है। तो ये फिर लेटर लिखो, लेटर लिख के बाबा से सारा बताओ, बाबा ये गलती हुई, ये गलती हुई, फिर चार्ट भरो याद का, फिर मुरली पढ़ो सोने के पहले, हो सके तो अव्यक्त मुरली पढ़ो, एक ही पैराग्राफ पढ़ो, फिर बाबा को याद करके सोचो। ये 4 बातें रोज नियम की नियम पूर्वक करो, और फिर 4 मर्यादाएं पवित्रता, जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना अमृत वेला अच्छा होगा। सबसे बड़ी पवित्रता ब्राह्मणों की क्या है, व्यर्थ संकल्प, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करती है, बाबा के बच्चा होके भी ऐसे करता है, बीके होके भी ऐसा करते हैं, अरे भाई तुम्हारा तुम्हारा क्या जाता है, ड्रामा में उसका पार्ट है ना, तुम क्यों क्वेश्चन करते हो, ये भी तो व्यर्थ है ना। सबसे बड़ी अपवित्रता ये वाली है। फिर टीवी दूसरी अपवित्रता है, टीवी बड़ी भारी अपवित्रता है, खबर ही तो देखते हैं, खबर देखने की क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या नरेंद्र मोदी हो क्या, कोई हमें आवश्यकता नहीं ना, बाबा आपको अपनी सारी खबर अपने आप बताएगा, बाबा से पूछो ना, नहीं तो दुनिया वाले अपने आप बता देंगे, मैं यूजली नहीं देखता, अखबार भी नहीं पढ़ता 6.25 साल से ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, अनपढ़ हूं क्या, मुझे सब कुछ लोग अपने आप बता देते हैं, आज वहां भूकंप आ गया, वहां ये हो गया, वहां ये हो गया, ठीक है बता दिया, अच्छी बात है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इससे बचो, तो ये ध्यान, पवित्रता जितनी बढ़ेगी उतना आपके अंदर मनसा वाचा करना संबंध संपर्क स्वपन तक भी पवित्रता बढ़ेगी उतना अच्छा। दूसरी शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, फल सब्जी अंकुरित दलिया दूध है ना, ये हमारा नाश्ता, ये हमारा भोजन होना चाहिए। पराठा पकौड़ा समोसा है राजसिक भोजन, इससे आलस आएगा, योग लगाओगे नींद आएगी, उबासी आएगी, गैस बनेगी पेट में, ठीक है, योग लगेगा नहीं। तामसिक भोजन चाय कॉफी, कोल्ड ड्रिंक कोका कोला पेप्सी अचार खाते ना सभी, थोड़ा थोड़ा खाते, कभी कभी खाते, आइसक्रीम यहां खा ले कोई बात नहीं, वहां मत खाना, ठीक है सुना, ये सब तामसिक भोजन है, ठीक है, ये मत खाओ, और आसक्ति से भोजन नहीं खाओ। तीसरा सत्संग, बस बाबा और बाबा की मुरली का संग करो, तीसरा कुछ मत पढ़ो, चौथा दैवी गुणों की धारणा, सरल रहो, नम्रता रखो, उदारता रखो, मीठा बोलो, धैर्यता रखो, गंभीरता रखो, ठीक है, ऐसे करो। जल्दी किए, एक बार गुस्सा किया 3 दिन तक योग नहीं लगेगा, उदास हो गए 5 दिन तक योग नहीं लगेगा, किसके प्रति बदलने की भावना रखी तो जब तक उसको माफ नहीं करो तब तक आपका योग नहीं लगेगा, योग में ना यथार्थ योग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये 4 नियम 4 मर्यादाएं पकड़ के रखो तो धीरे धीरे विकर्म विनाश होते जाएंगे। 63 जन्मों के विकर्म विनाश होने के बाद फिर एक दिन वो आएगा जब आपके 63 जन्म के विकर्म विनाश हो जाएंगे, 20वें जन्म पे पहुंच जाओगे, तब द्वापर के जन्म त्रेता के जन्म शुरू होंगे, तब हमने कोई विकर्म नहीं किए हुए अकर्म, तब हमारी कर्मातीत स्थिति बनेगी, तब हमारी एक्चुअली बैटरी चार्ज होनी शुरू होगी, तब हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। संपन्न संपूर्ण बनने के बाद फिर हमें बोलने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, तब हमारी वृत्ति के द्वारा, भावना के द्वारा और संकल्पों के द्वारा सेवा होगी और तब हम फरिश्ता बनेंगे, ठीक है। तो 5 स्टेप हैं, विक्रमाजीत, विक्रमाजीत के बाद बनेंगे कर्मातीत, कर्मातीत के हमारी के बाद संपन्न और संपूर्ण, और फिर चौथा होगा अव्यक्त, और फिर बनेंगे फरिश्ता, ठीक है। ओम शांति, चल ताली नहीं बजाना, ताली नहीं बजाना, ओम शांति। चल एक मिनट बाबा को याद करो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा रिवाइज करने में तो बहुत देर हो जाएगी मेरी बात, सुनो सुनो, चलो एक मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बात तो आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद क्यों नहीं करनी है, हमें चल, हमारा कर्म योग है। आप खाना आंखें बंद करके बनाते हैं क्या, कपड़े आंखें बंद करके धोते? हमारा हर समय, हमारा बेसिक राजयोग माना, राजयोग माना चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम आउटर सेल्फ टू इनर सेल्फ। हम जो बॉडी कॉन्शियस की बजाय सोल कॉन्शियस, हर समय मैं आत्मा हूं, देही माने स्थिति माना ही राजयोग है। मैं आत्मा हूं, चलते फिरते उठते बैठते खाना बनाते हर काम करते, बाथरूम में शेव बनाते हर काम करते, मतलब कोई भी काम हो ब्रश करते, हर समय यह स्थिति रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमें बहुत ध्यान रखना कि हमारा योग योगी जीवन है, 10-15-20 मिनट का योग नहीं है। उस समय तो हम इंटेंस योग करते हैं सुबह शाम, तो वो अलग बात हो गई, कि तो उसमें भी हमें हमारी आंखें खुली जागृत अवस्था में हमें योग करना है, सोना नहीं है। तो हमें योग हमेशा चलते फिरते उठते बैठते करना, चेंज ऑफ ये समझना है। देही माने स्थिति, बाबा की करंट यहां तक, वायर यहां तक आई है, जैसे ही हम देवयान से बाहर आते हैं उसकी उसकी करंट की वायर एकदम आके तक से यहां पे लग जाती है, करंट आने शुरू हो जाती है। हम अंदर बैठे हैं तो वो तो उसकी बस इतना देह अपने को आत्मा समझते करंट आने शुरू हो जाएगी, योग लग गया है ना। तो ये हमेशा उठते, और कभी भी कोई हमें मुद्रा लगा के योग नहीं करना, मुद्रा समझते कई लोग ऐसे करके बैठते हैं, कोई पता नहीं कैसे करके बैठते क्या करके बैठते। अरे भाई जब तुम गाड़ी चलाओगे तो फिर क्या होगा, आप तो योग लगेगा नहीं, रोटी बनाओगे तो ऐसे से रोटी बनाएंगे क्या, कपड़े धोगे ऐसे धोगे क्या, कोई मुद्रा नहीं लगानी, ठीक है। जो बाबा ने कहा वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बाबा ने क्या कहा, उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, ठीक है। अगर आप मुरलियां आप ध्यान से नहीं पढ़े, ध्यान से पढ़ो ना, आप मुरली की हर लाइन, एक एक लाइन पे मनन करो, चिंतन करो, मंथन करो, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अपने आप। करो, अपना खजाना खुद निकालो, अपनी घोट तो नशा चढ़े, ठीक है, अपनी घोटो तब फायदा होगा। दूसरे की घोटी हुई चीज खाओगे ना तो बदहजमी हो जाएगी, ठीक है। ओम है अमृत वेला माना, सिर्फ अमृत वेला, सोने के पहले लेटर लिखोगे ना, सोने के पहले लेटर लिखो, चार्ट भरो, बाबा की मुरली पढ़ के और बाबा को याद करके 9:45 तक सो जाओ, बाबा टाइम कर दो, बाबा मुझे 9:45 उठा देना, 9:45 बाबा आपको उठाएगा, 9:45 नहीं उठाएगा, 3:44 पर उठाएगा। उठ के मुंह हाथ धो के ब्रश करके बैठ जाओ और ऑटोमेटिक आपका कनेक्शन लग जाएगा, ठीक है, एकदम ऐसे जाएंगे ऊपर। ABCD को रियलाइज कर लो, कुछ सोचना नहीं, बस ये ABCD को अंदर अनुभव करो, मैं ये हूं, मेरा वो है, मेरा उससे संबंध है, D4 ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो बस अपने आप ही थोड़ी देर में तो क्या होगा, अपने आप ये भी नहीं करना पड़ेगा, बैठे और गए, है ना। योग का उल्टा क्या है, योग का उल्टा क्या है, गयो, नहीं यो, योग शब्द नहीं बोलो, गयो बोलो, ठीक है। अमृत वेला बैठो ना योग करने, गयो, बस ओम शांति, ठीक है, अमृत वेला। ओम शांत। हाँ वो भी करते, वो तो सिंपल है ना, वही हमारे पांचों स्वरूप पवित्र स्वरूप है, अनादि स्वरूप पवित्र स्वरूप है, आदि स्वरूप पवित्र स्वरूप है, मध्य स्वरूप पवित्र स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप पवित्र स्वरूप है, ये पांचों स्वरूप हमारे पवित्र स्वरूप है, इनको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि हम ये हमारा चक्र है ना, इस चक्र में बार बार चलते फिरते उठते बैठते रिवाइज करो। मैं तो उठते 7 बार रिवाइज करता हूं, ठीक है ना। फिर अमृत वेले वैसे तो 2 बजे शुरू होता है, किंतु वैसे आपको 4 से 5 के बीच में सिर्फ आधा घंटा कर लो तो भी बहुत अच्छा, ठीक है। इसलिए क्वालिटी क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी करो। क्वालिटी तब होगी जब सोने के समय रात को ठीक टाइम पे सोओगे, और रात को नींद गहरी आएगी। नींद तब गहरी आएगी जब अच्छे से चार्ट लिख के, लेटर लिख के, चार्ट लिख के अपनी गलतियों की माफी मांग के सोओगे ना, और फिर मुरली पढ़ के अच्छे से। और हमारा सोने का जगह कहां पर है? अपने बेड पे मत सोना। आपका जो बेड है ना वो तो गैरेज है, ये कार है, कार को गैरेज में पार्क करके हमारा बेडरूम कौन सा है? सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म कितनी दूर है? सूक्ष्म वतन एक सोच की दूरी पर है। कितनी दूर है? एक सोच की। एक पवित्र संकल्प करो पहुंच जाओगे। और फिर हमारा बेड कौन सा है? बाबा की गोद। अपने बेड पे जाके सोना है ना। गैरेज में सोओगे तो मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े सब आएंगे, काकरोच भी आएंगे, मतलब बुरे बुरे सपने आएंगे, काकरोच में ना बुरे बुरे सपने आएंगे। ओम चलो।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता जी का, बहुत ही सूक्ष्म रीति से, बहुत ही रमणीकता से आपने समझाया हम विकर्म विनाश कैसे करें। समझ में आ गया ना सभी को?